तुम्हार सुख के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सहारे हो, भक्ति के सहारे हो।
श्रीमद हम लोगों का अशेष सौभाग्य है कि हमारे मध्य में इस बम्बई महानगरी में गुरुपाद पद्म यहाँ समुपस्थित होकर हम सबके प्रति अशेष कृपावर्धन कर रहे हैं। इस जीवन में संतों का दर्शन, महान पुरुषों का दर्शन और जो कृष्ण के अनन्य प्रेमी जन हैं, रसिक भक्त हैं, ऐसे महान पुरुषों का दर्शन अति विरल होता है। अभी अभी आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं का वर्णन हो रहा था, जिसमें दशम स्कंद की कथाएं, जहाँ द्वारकानाथ प्रभु ने अशेष विशेष प्रकार से लीला करते हुए कितने प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। जबकि भगवान ने उद्धव को कहा कि देखो उद्धव, संसार में साधु संग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, परंतु संसार में जितने साधु हैं वो क्या करते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण का तो आश्रय लेते हैं, कृष्ण को मानते हैं, परंतु उनकी सेवा नहीं करते, न भक्ति करते न भजन करते, कृष्ण को मानते हैं, सतगुणों से युक्त होते हैं, पर वे वैष्णव नहीं होते। जब ऐसे महान गुरु से आश्रय लें, मंत्र दीक्षा ग्रहण करें, सदाचार पूर्ण जीवन बिताएं, तब उनको वैष्णव कहा जाता है। और ऐसी भक्ति करते हुए जिनके अंदर में अनन्य ममता होती है, प्रेम जागता है कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति अनन्य ममता, वही प्रेमी होता है। और ऐसे प्रेमी जन जो मेरे प्यारे होते हैं, भगवान कृष्ण बोले उन प्रेमी जनों में सर्वश्रेष्ठ प्रेमी जो ब्रजभूमि में है, जिनके लिए मैं सदैव तड़पता हूँ। कृष्ण ने उद्धव को कहा ऐसे संसार में विरल प्रेमी कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं। आज हम लोग गुरुपाद पद्म से भगवान श्री कृष्ण के जो अमृतमय वचन है, उपदेशावली है, हम सबके जीवन के एकमात्र आधार स्वरूप हैं, उन्हीं का हम लोग पान करेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया हम सबको अपना वचनामृत श्रवण करें।
अभी श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ हरि कथा परिवेशन करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले गुरुपाद पद चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत्पत्ति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारीगण, गौरवर्त प्राण सज्जन वृंद एवं मातृमंडली को मेरा यथाजगत अनुरोध प्रणाम एवं अभिनंदन। श्रील गुरु जी ने आदेश दिया, गुरु जी आदेश पालन करने के लिए मुझ कहने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग गुरु जी के श्रीमुख से एवं श्रीपाद तीर्थ महाराज जी से भागवत कथा सुन रहे थे। कितने सुंदर कृष्ण की लीला, इस लीला में प्रवेश करने का उपाय क्या है? इसका उपाय श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एकादश स्कंद एवं द्वादश स्कंद में इसका वर्णन किया। जगत से बहुत से लोग हैं, कोई सांख्य का आश्रय लेते हैं, कोई न्याय का, जो षट दर्शन है विभिन्न दर्शन का सहाय लेकर सोचते हैं इससे हम भगवान को लाभ करेंगे, उनका प्रेम लाभ करेंगे। ऐसे हम सुनते हैं बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, नंदलाला को प्राप्त करना है तो प्रेम चाहिए। ये सांख्य के द्वारा, न्याय के द्वारा, पतंजलि योग के द्वारा प्रेम संभव नहीं है। कृष्ण स्वयं उद्धव को बताया न साधयति मां योग सांख्यम धर्म उद्धव, हे उद्धव मुझे सांख्य के द्वारा और नानो जो स्वदर्शन के द्वारा मुझे कोई लाभ नहीं कर सकता है। कैसे मिलेंगे? यथा भक्ति ममोर्जिता, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूँ। इसलिए कहा गया भक्ता तुष्यति केवलम भक्त ही प्रिय माधव, माधव यानी भगवान कृष्ण के प्रिय कौन है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, इससे छड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भागवत में कहा गया वशी करवंती पदे नित्यम सस्त्रियो सत्पति यथा, जैसे सत स्त्री अपने सेवा के द्वारा अपने पति को वशीभूत कर लेती है, ऐसे ही भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण को भक्तजन वशीभूत कर लेते हैं। ये भक्ति मिले कैसे और भगवान वशीभूत हो कैसे, इसके लिए कह रहे हैं केवल साधु संग, साधु संग के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। जगत में अब तक जो जो भगवान को मिले हैं सब जगह में देखेंगे साधु संग है। हम देखते हैं कुछ कार्य देखते हैं, जगत में सब कुछ कॉज एंड एक्शन थ्योरी के ऊपर निर्भर है। कुछ कार्य देख करके हम कारण के अनुमान कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने बताया सब जगह में साधु संग है। वृष बोली महाराज, वृष पर्वा, राक्षसी, जातुधान, विभीषण, जब जब जिन जिन को भगवान मिले हैं सब में ही कौन है? साधु संग छिपा हुआ है पीछे। जब सीता देवी को खोज करने के लिए, ढूंढने के लिए हनुमान जी गए थे, आकाशमार्ग से घूमते घूमते देखा रावण के पलंग पर एक परमा सुंदरी सो रही है पी करके, तो सोचा ये क्या सीता देवी होंगी? बोले नहीं, सीता मतलब ऐसे शराब नहीं पी सकती है और परपुरुष के साथ सो भी नहीं सकती है। दूर तक सुनाई पड़ा राम राम राम, तो वहीं पर बहुत सूक्ष्म रूप में उतर आए, आके विभीषण से मिले। विभीषण ने बता दिया सीता देवी अशोक कानन में है, अशोक वन में है। तब तो वहीं से जाके सीता देवी से बातचीत करके आए और आने के पहले लंका को पूरा जला दिया। जब दूसरे दिन रावण और मेघनाथ और सब लोग मिलकर के लंका को मैना कर रहे थे, तब देखा केवल विभीषण का ही मकान जला नहीं, सब जल के राख हो गया। तो उन लोगों को संदेह हुआ, फिर बात क्या है? रावण के जासूस तो सब जगह रहता है, बताया रात में कोई एक बंदर आया था। तब देखा घर में एक स्थान में रा लिखा हुआ है, दूसरे से म लिखा हुआ है। तब बताया मेघनाथ जी ने, पिताजी देखिए ये आपके भाई बनते हैं, हमारे शत्रु राम का नाम जप करते हैं, राम लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा राम लिखा हुआ है? इधर रा है इधर म है। विभीषण ने बताया नहीं भाई साहब, मैं राम क्यों लिखूंगा, जे जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, जो भगवान को भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। तो बोलते ये रा और म किसने लिखा है? बोले मेरे अग्रज जो रावण है अभी राजा है इसलिए रा लिखा, और इसके बाद मेरे जो भतीजा युवराज है मेघनाथ राजा बने से म लिखा है, मैंने राजा का नाम लिखा। इसलिए भगवान इतने भक्त लोग इतने चतुर हैं, उनको ठग दिया। और विभीषण को भगवान कैसे मिले? हनुमान के संग के कारण। ऐसे जो भी भगवान को आज तक प्राप्त किया है सब जगह पीछे साधु संग है। श्री सनातन वही बात बृहद भागवतामृत में सब बहुत विस्तार विवेचना किया है, शायद हम लोगों का ग्रंथ भी प्राप्त होगा बुक स्टॉल में, आप लोग देख सकते हैं। ये भक्तों के जो कैटेगरी है सब भक्त समान नहीं है, भक्ति के तारतम्य के अनुसार भक्त का भी तारतम्य है। श्री गुरु जी के उसी मुख से हम लोग सुनते हैं भक्त पांच प्रकार के हैं। एक है ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी, शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज, प्रेमी भक्त हनुमान जी, प्रेमपर भक्त पांडवगण और प्रेमातुर भक्त उद्धव जी। जो उद्धव को भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि साधु संघ के द्वारा ही भक्ति होती है और साधु संघ के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो ज्ञानी भक्त हैं, ये सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं, जिस भाव से भगवान की सेवा करते हैं, सोचते हैं सभी इसी भाव से सेवा कर रहे हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान में सभी को दर्शन करते हैं, ये ज्ञानी भक्त हैं। और जो शुद्ध भक्त है अम्बरीश महाराज, जितने इंद्रियां हैं, हाथ पैर कान सब के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं, भगवान के सिवाय एक क्षण भी रह नहीं सकते, सब समय सेवा में तन्मय रहते हैं। जब युद्ध हो रहा था लंका में, रावण का किला है, भगवान नाम किला का, हनुमान जी अपने कुछ के द्वारा परकोटा बना लिया और वही गेट पे खुद खड़े रहते थे। ऐसे जब रावण को वध करके राम जी वापिस आए, एक दिन देखा सीता माता श्रृंगार भवन में श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी को सूझा मैया कहाँ है, अभी तो राज सभा में है नहीं, ढूंढते ढूंढते आए देखा ये सिंदूर लगा रही है। पूछा मैया तुम क्या कर रही हो, बोले बेटा मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ किस लिए, तुम्हारे पिताजी के सौभाग्य के लिए और उनका दीर्घ जीवन लाभ होगा। अच्छा, हनुमान निकल आए। जिन सीता देवी राजसभा में चली गई, आए श्रृंगार भवन में, जितने सिंदूर था सब लिया और तेल था सबको मिलाकर पूरा शरीर में पोत लिया। पोत करके राजसभा में आए, भगवान देख करके हंस रहे हैं, सीता देवी समझ गई, सीता देवी मुख छिपा करके हंसने लगी। राम ने पूछा हनुमान तुम क्या किया, तो बताकर मैया थोड़ी सी सिंदूर लगाते बिंदिया इधर आपका दीर्घ जीवन होता है, इसलिए पूरा शरीर में सिंदूर लगा लिया, आप दीर्घ जीवी हो, इसलिए आज तक जहां भी हनुमान जी का मूर्ति है देखेंगे पूरा लाल है, इसी के कारण है। और पांडव लोग ये प्रेम पर भक्त हैं, हनुमान जी प्रेमी भक्त तो हैं, राम का आलिंगन नहीं कर सकते, एक थाले में खा नहीं सकते, लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी कृष्ण को ऐसे वशीभूत कर रखा है, उन लोगों की सेवा की बात ही क्या, उन लोगों को घोड़े को धोते हैं, घोड़े की सेवा करते हैं। अर्जुन कहते हैं सेनाओं उभय मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, वही करते हैं। अर्जुन के साथ एक थाले में खाते हैं, एक पलंग पर सोते हैं, केवल यही नहीं अपने बहन की अर्जुन के साथ शादी करके खुद भगवान अर्जुन के साले बन जाते हैं और द्रौपदी जैसे चाहे ऐसे कृष्ण को नचाती है। जब कुछ हो तभी कृष्ण पुकार, कृष्ण आने के लिए भागते हैं। जब पांडव लोग वनवास में थे तब दुर्योधन कर्ण ने सोचा एक तथा नीचा दिखाना है, तो क्या किया, द्रौपदी को ठगने के लिए और पांडवों को विनाश करने के लिए क्या किया, दुर्वासा ऋषि को भेजा। एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के राजभवन में आए थे, बहुत खिलाया पिलाया, बता वर मांगो, बता अगर वर देना चाहते हैं, मेरे भाई वन वन में भटक रहे हैं, उनके जाके उन पर कृपा करें, उनका भी प्रसाद सेवा करें, लेकिन तृतीय प्रहर के बाद जाए। तो सोचते हैं सब सब जानते हैं ऋषि, ठीक है यह मस्तु। आए तीसरे प्रहर में, आके बताया हे राजन मैं आपका अतिथि हूं, मेरे साथ में 60,000 शिष्य हैं, आप उनकी सेवा की बंदोबस्त करें। युधिष्ठिर ने कोई बात नहीं, आप स्नान करके आइए, तब तक भजन तैयार हो जाएगा। अपने भाइयों को बुला करके हम क्या करें, अब ऐसे तो वन में भटक रहे हैं और ऋषि की सेवा ना हो तो अभी सब सभी जला देंगे, तो चलो द्रौपदी के पास चलते हैं। द्रौपदी को जब बोला, द्रौपदी मुझे क्षमा करें मैं कुछ नहीं कर सकती। द्रौपदी देवी के पास सूर्यदेव के दिया हुआ एक पात्र था, और जो कुछ बनाएंगी जब तक खुद खा करके बर्तन धोकर उलाट नहीं देती है, विश्व ब्रह्मांड आने पर भी खिला सकती थी, और जब धोके उलाट देगी दूसरे दिन जब तक सूर्योदय न हो तब तक कुछ नहीं कर सकती। द्रौपदी देवी ने बताया मैं अभी अभी खा करके इसको उलाट दिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब करे क्या। अब बोले कृष्ण को पुकारा जाए, पंच पांडव ने बोला हम पुकारेंगे तो कृष्ण आएंगे नहीं, द्रौपदी तुम पुकारो। द्रौपदी यही पुकारी, कृष्ण दूर कहां आके प्रकट हो गया, आके बोला द्रौपदी बहुत भूख लगी हो सखी, बहुत भूख, कुछ खिलाओ। द्रौपदी सखी कुछ सुनो तो सही, कुछ खिलाओ पहले, पाद में सुनूंगा, बहुत भूख लगी है। बोले मैं तो बर्तन धोके उलाते, ला उसको। लाए, एक साग का टुकड़ा था, लेकर मुख में डाला, बोले पानी दो। पानी पिया, तृप्तोष्णी तृप्तोष्णी, यही भगवान ने तृप्तोष्णी कहा, समस्त जगह तृप्त हो गए। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणते प्रीणतम जगत, जब भगवान खुद संतुष्ट होते हैं पूरा जगत संतुष्ट हो जाते हैं। अब बताया भीम जी को जाओ अब ऋषि को बुला लाओ, और ऋषि भजन तैयार देर न करें। भीम जी बोले गदा साथ में ले जाना। भीम जी साथ हाथ गदा लिया कंधे पर और एक हाथ से मूछ में से करते हुए जा रहे हैं। ऋषि बार मैं भाई साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी आइए जल्दी आइए। वो लोग बिमला कुंड स्नान कर रहे थे, देखा अरे भीम तो गदा लेकर के आ रहा है और कह रहे भोजन तैयार है, हम नहीं जाए तो गदा के प्रहार से इसको राम नाम सत्य कर देगा। अब तो क्या करें, जब बल से कोई पानी के अंदर से चले गए भाग गए, कोई आकाश मारे भाग गए। भीम जब नजदीक गए कोई है नहीं। ऐसे पांडव लोग प्रेम पर भक्त हैं, कृष्ण का ऐसे वशीभूत कर रखा है, और प्रेमातुर भक्त हैं उद्धव जी। इस उद्धव जी के बारे में हमने काल सुना, गिरिधर जी उद्धव के गोपी के बीच में संगीत है उसको गाया, कृष्णदास प्रभु ने भी गाया था। और गुरु जी कल बताया था उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजा, कृष्ण ने सोचा हो ब्रज की गोपियां जो हैं अपने दुख को आपस में बांट लेती हैं, हमारे पास तो कोई है नहीं, और उद्धव ब्रज में जाएगा, उधर सुन के आएगा, प्रेम सीख के आएगा, तो ये मेरे गुरु भाई होंगे, आपस में हम वार्तालाप करके कुछ दुखों को लाघव करेंगे। कोई बहुत दुखी हो दूसरों को बता दे तो उनका दुख कम हो जाता है। ऐसे कृष्ण सोचा मेरे पास तो कोई है नहीं, इसलिए उद्धव को योग्य पात्र समझ करके भेजा था। और जो कल हुआ था आपने गुरु जी के श्रीमुख से सुना, अब हम गुरु जी के श्रीमुख से ही श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण पंचा गोलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्रोतर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पण करता। तत्पश्चात सन्यासी वृंद वैष्णव एवं वैष्णवी, बड़े आनंद की बात है कि आज सातवां दिन पूरा होने जा रहा है भागवत का। मैं पहले भी इसके आया हूं किंतु श्रद्धालुओं का इतना समावेश पहले कभी नहीं देखा। जो जो इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, भाग लिया है, उस सबको भक्ति हो। विशेष एक बात है, गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद्भागवत निकला है, अखंडानंद सरस्वती का अनुवाद किया हुआ है। भारतवर्ष में बाहर में वही प्रचलित है क्योंकि दूसरा कोई हिंदी का संस्करण नहीं है। वे अद्वैतवादी थे। अद्वैतवादी मैंने क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कृष्णा माया के द्वारा आच्छादित थे। भक्ति का जहां पर सर्वत्र भागवत में प्रसंग आया है उसको छिपा करके ज्ञान की प्रधानता दी है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादान आदि अनावृतम अनकुंशनेन कृष्णानुष। यहां भक्ति की बात कही गई। एक और कहा गया, जो नहीं जानते हैं, जो अनजान हैं, उनके लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। जस्या स्वयं अर्णायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपपद्यत पुंस शोक मोह। इसके श्रवण करने से, पठन करने से, पाठन करने से भक्ति होती है। और अंत में उन्होंने कहा है, श्रीमद् भागवतम पुराण अम्लम जद वैष्णवानां क्रियम। वैष्णवों का प्रिय श्रीमद् भागवत है और द्वैतवादियों का नहीं। भागवत में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं कि कोई ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म हो जाता है। इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे। भागवत में बतलाया कि जो लोग केवल सूखे ज्ञान के लिए, निर्विशेष ज्ञान के लिए, ब्रह्म निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, वो दया भी नहीं कर सकते, ऐसे ब्रह्म ठूठे ब्रह्म की क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए बतलाया वो श्रीमद् भागवत का श्लोक,
ज्ञानी जीवन और अंध बिंदा सभी मुक्त माने ना।
नहीं नहीं
की बोलते हैं बोलूं, ओ तुलसीदास भक्ति ना, श्रेयस्रितिं भक्ति,
हाँ श्रेयस्रितिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशयन्ति जे केवल बोधो लब्धे तेषां असौ क्लेशालेव
शिष्यते
शिष्यते
नान्यथा।
केवल ज्ञान के लिए प्रयास जो करते हैं वो कैसे हैं, धान की भूसी होती है जिसमें चावल के कण निकल जाते हैं, उस भूसी को लाख वर्ष तक कूटते रहो तो क्या होगा, केवल परिश्रम ही परिश्रम है। ऐसे ज्ञान के लिए जो प्रयास करते हैं वो मूर्ख हैं, वो थोथा भूसी कूट रहे हैं, ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया। यहां पर भक्ति का इतना है, वहां पर अद्वैतवाद नहीं आ सकता। वो वैष्णवों का प्रिय है, अद्वैतवादियों का प्रिय नहीं। उनका प्रिय क्या है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, और क्या
प्रज्ञानं ब्रह्म
तत्त्वम्। बस इसलिए इन लोगों से सावधान रहेंगे। विशेष करके मैं बंबई में देखता हूं, अखंडानंद जी का अभी भी प्रभाव है चारों तरफ। यहां पर भी उनके फोटो टोटो सब लगे हुए हैं, किंतु आप लोग भक्त बनिए, भक्त हैं इसलिए खूब सावधान रहेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक समय नारद जी द्वारका में आए, किस लिए, मन स्थिर करके किस चरणों की उपासना करने के लिए। क्यों द्वारका में क्यों आए, मन स्थिर करने के लिए। दक्ष प्रजापति के कुछ पुत्र थे, दक्ष प्रजापति ने नारद जी के पास में पढ़ने के लिए भेज दिया। नारद जी ने भक्ति की ऐसी शिक्षा दे दी कि अब संसार करने की उनमें स्पृहा ही नहीं रही। वो वहीं से नारद जी के पास से ही चले गए भजन करने के लिए, वन में चले गए। दक्ष प्रजापति आए जैसे, वो कहां गए, तो यहां से तो चले गए, तो कहां गए, मैं नहीं कह सकता जी कहां गए। अब वो फिर घर नहीं लौटे, बड़ा वो दुखी हुआ। दूसरी बार फिर अपने लड़कों को भेजा, फिर नारद जी ने पाठ ऐसा पढ़ाया, भक्ति का तो और तो कुछ तो जानते नहीं है, भक्ति ही जानते हैं, ऐसा पाठ पढ़ाया कि बेचारे वो भी घर गृहस्थी छोड़ करके, माता पिता छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले गए। जो भगवान की सेवा के लिए घर बार स्त्री पुत्र परिवार छोड़ देता है, उसका देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण सब कुछ मिट जाता है, किसी का अब ऋणी नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता माता का ऋणी है, ऋषियों का ऋणी है,
देवताओं का
ऋणी है, क्योंकि ये वर्षा इत्यादि देते हैं, जीवन धारण हम करते हैं,
राजा का ऋणी,
राजा के ऋणी है हम, किंतु ये सभी ऋण जो मुकुंद को भजन करने के लिए चले जाते हैं उनका सब ऋण समाप्त हो जाता, उनके लिए कोई ऋण नहीं रहता। इसीलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। चुपचाप बैठना, चुपचाप बैठना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में सर्वत्र भक्ति ही भक्ति की बात है। तो नारद जी गए, वसुदेव महाराज ने उनकी पूजा की, और जिनके बेटे कृष्ण हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इनको तो हमने बेटा समझा, हमने भव सागर से पार करने के लिए, माया से पार करने के लिए कोई उपाय नहीं किया, आप कुछ हरि कथा सुनाइए जिससे मैं भव सागर से पार हो जाऊं। यथार्थ में ये भव सागर से कहां पार होकर के बैकुंठ से ऊपर कहां के पार्षद हैं और उनसे पूछ रहे हैं। पहले उन्होंने पूछा ये माया का स्वरूप, पहले पूछा जो कैसे आदमी सुखी रह सकता है। उन्होंने बतलाया कर्मण्य अधिकारस
कर्मण्य अर्हो मनन
कर्मण्य
अधिको मननम दुःख हत्यै सुखाय च।
ठीक है, कर्मण्यारभ मननम दुःख हत्यै सुखाय च पश्येत पाप विपर्यासं मिथुनी चारिणाम नृणा। अब से जब से सृष्टि हुई है अब से अब तक सभी लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं, विवाह शादी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं सुख के लिए। कर्मण्यारम्भ मानानंग दुख हत्या ही सुखाय, दुख न हो और सुखी प्राप्त हो, किंतु होता है इसके उल्टा। जगत में जो ऐसा चाहते हैं उनको सुखी होना चाहिए किंतु होता नहीं है, दुखी रहते। अभी तो नौजवान है मालूम नहीं होता है, वृद्ध जब होंगे मरने के समय में कफ पित्त सब घर घर आए थे, उस समय में बोल नहीं सकते, गला बंद हो जाएगा, आंखें निकल जाती हैं, कोई कोई तो तत्ती पे खाना भी कर देते हैं। इसलिए बतला रहे हैं कर्मण्यारम्मानानं दुःखत्तै सुखाय च पश्येत पाकं विष्णा मुनि मिथ्यार्थ देन वित्तेन। अरे बेटे तुम चाहते हो जो धन के द्वारा सुख होंगे, नित्यार्थ देन, धन तो सब समय आरती दुख देने वाला, कैसे? धन नहीं है तो दिन रात परिश्रम करो, और यदि धन हो गया दिन रात उसी की चिंता भगवान कहां है ये भी भूल जाओ, और यदि धन प्राप्त नष्ट हो गया हाय 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 धन चला गया, उस धन से उपार्जित कुटुंब बंधु बांधव पुत्र स्त्री पशु आदि इनके द्वारा सुख कैसे संभव है? कभी भी सुख नहीं होगा, केवल मात्र भगवत भक्ति से ही सुख हो सकता है, निर्विशेष ज्ञान से भी सुख नहीं हो सकता। निर्विशेष ज्ञान में जब हम ब्रह्मास्मि, जबकि अद्वैतवादी लोग समझते हैं, उसमें भगवान क्या करते हैं अपने में लीन करके और उनकी चेतनता को हरण करके लकड़ी जैसा बना देते हैं, उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। यही तो अद्वैतवादियों की मुक्ति है, अत्यंतिक रेव मुक्ति। इसलिए इस मुक्ति को वैष्णव लोग देने पर भी भगवान के नहीं ग्रहण करते हैं। इसके बाद में पूछा माया का स्वरूप क्या है और उसे बचने का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा जे माया यह है, जब भी भगवान को हम भूल जाते हैं तभी माया भगवान से दूर हमें फेंक देती है और यह स्थूल शरीर और लिंग शरीर, मन और ये स्थूल शरीर पंच भौतिक शरीर दे देती है, ये माया है। उसके प्रभाव से, जिसके प्रभाव से हम अपने को शरीर समझने लगते हैं, अपने को भगवान का नित्य दास आत्मा नहीं समझते, इसका नाम माया है। माया माने माया, जो नहीं है उसको वही समझते। हम शरीर नहीं है उसको कहते हैं जैसे यही शरीर है। इसके लिए सभी लोग सब कुछ करो, ये माया है। हरि कथा सुन करके भी, ये सब बातें सुन करके भी लोगों को होश नहीं पड़ता, बस धन कमाने में भगवान को भूल जाते हैं या कम भाव विस्मरण कर भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा नहीं समझते, ये भगवान की माया है। यह ब्रह्मा से लेकर के अभी तक सभी लोगों को माया नचाती है। असल में माया एक है, वो जोग माया है, जीवों से भगवान का मिलन कराती है। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं जोग माया पर, उसकी छाया ये महामाया काली दुर्गा इत्यादि हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना ही मूल कर्तव्य है। उनका जो ऐसी माया को कैसे पार किया जा सकता है, भयं द्वितीयात अभिनिवेशतस्यात ईशात पेतस्य विपज्जो स्मृति तन्माया तो आबुदम भजं तहं
तो कैसम गुरुदेव तत्मा।
भगवान को भूलने के वजह से हम इस संसार में आए और देह में आसक्ति हो गई, और देह के आसक्ति में ऐसे आसक्त हो गए ये भगवान को भजन भूल गया। अब केवल गुरु को देवतात्मा भगवान का ही स्वरूप समझकर गुरु जी की सेवा करो, उनके मुख से जो कुछ उपदेश सुनते हैं उसका पालन करो और कृष्ण का भजन करो, इसे सहज ही माया का पार हो जाए। भगवान के नाम में क्या इतना कठिन है? मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं 10 बार उठो 20 बार उठो दंडवत करो, कितना परिश्रम। इसमें तो हरे कृष्ण नाचो गाओ खाओ प्रसाद पेट भर करके खाओ और बस हरि नाम करो। केवल हरि नाम ही नहीं, कीर्तन, और उस समय में नाचो गाओ कृष्ण दास जी सबको नचा देंगे, अभी कीर्तन करेंगे तो इस तरह से भक्ति के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भागवत में सर्वत्र ऐसा ही लिखा गया है। कृष्ण जबकि उनका विनाश हो गया, उनके कुल का, जदुकुल का लड़ मर करके कट करके खत्म हो गए, अर्थात उसी बहाने हमने बतलाया था गोलोक वृंदावन में चले गए उनको लेकर के, तो उसके पहले जबकि युद्ध करके सब मर कट गए, तब बलदेव जी समुद्र में स्नान करने के बहाने वो भी गोलोक वृंदावन में चले गए, और उसके बदले में एक सफेद सर्फ शस्त्र फनाधारी निकला और वो चला गया। तत्पश्चात कृष्ण आकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर बैठे, वो कौन जगह कहलाता है,
प्रभास्तीत
बैठे, एक पैर पर दूसरा पैर रख करके बैठे। उसी समय में हठात दारुक उनका जो रथ का चलाने वाला था आया, ज्यों ही आया तो ही वो देखा रथ से उतरते हुए घोड़े और रथ के समेत सभी कुछ चला गया ऊपर आकाश मार्ग में, अदृश्य हो गया। ये क्या हुआ? कृष्ण ने कहा, जे देखो विलंब मत करो, अभी छोड़ करके स्थान चले जाओ, द्वारका डूब जाएगी, चले जाओ। जब वो चला गया तो उद्धव उसी समय में आए, और उनको संदेश दिया जो जिसको कि उद्धव संवाद कहते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें बतलाया। एक समय दत्तात्रेय नंग धड़ंग मोटे ताजे प्रसन्न चित्त घूम रहे थे पृथ्वी, ननी महाराज से भेंट हुई। ननी महाराज कहा, ये ऋषिवर नंगे धड़ंगे हैं, न खाने का स्थान न पीने का स्थान न कुछ, ना ये मोटे तगड़े और बड़े मुस्कुराते हुए सब समय आनंदमय में हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने पूछा, उनको प्रणाम किया दंडवत और कहा, जैसे आप इतने मोटे तगड़े और बड़े प्रसन्न चित्त हैं, क्यों? आपका न घर है, न कहीं स्थान रहने का है, न आपके पास में पैसे हैं, इतना सुखी क्यों है? उन्होंने कहा, जे देखो हमने कितने गुरु, 24 गुरु हमने किए हैं, और वो 24 गुरु क्या हैं? संक्षेप में मैं 2-4 बतला रहा हूं। पृथ्वी मेरी गुरु है, ठीक है, उनको बातचीत उनको सुनने कोई बात नहीं, तो क्या
पृथ्वी गुरु है,
पृथ्वी गुरु क्यों? उन पर टट्टी करो, पेशाब करो, खोदो, जो कुछ इच्छा हो करो, कुछ नहीं बोलती है, सब सहती हैं, ऐसे सहिष्णु बनो, तब भगवान का भजन और भक्ति होगी। और कहीं खटमल ने काट दिया, बस उसको बम चलाने के लिए बस चेष्टा कर, बस हो गया, ऐसा नहीं। वृक्ष, वृक्ष हमारा गुरु है, मारो तो फल देगा, उसके छिलके, उसकी जड़ें, उसका फूल, सभी पदार्थ के लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। और फिर भी यदि पानी नहीं मिलता, सूखने लगता है, तो नहीं कहता जी हमें पानी दो। वैष्णव लोगों को ऐसा होना होगा, यदि भजन करना चाहते हो, पूछते हैं बहुत से लोग, ये मैं भजन नहीं करता, रुचि नहीं होती है, अरे ये सब तो उपदेश पालन करो, पालन तो करें नहीं, भक्ति हो जाए। बाजार में वो पारस पत्थर मिल रहा है, जिसको लोहे से स्पर्श करा देने से
सोना हो जाता है,
सोना बन जाता है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं, आप पास में एक कौड़ी नहीं है, तो क्या उनको पारस पत्थर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ऐसे पारस पत्थर के करोड़ों गुण अधिक नाम और भगवान है, उनको लिए ये सब उपदेश पालन करेगा तब भगवान की भक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मैंने आकाश से आकाश को गुरु बनाया, आकाश में कैसा भी दुर्गंध हो, सुगंध हो, किंतु आकाश निर्लेप रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह से साधु संतों को निर्लेप होना चाहिए, दुख आया सुख आया, बिलबिलाने लगे दुख आया, और सुख आया तो खूब उछलने लगे आनंद से, नहीं, सब में समभाव रखना चाहिए। मैंने इसी तरह से कबूतर से कुछ सीखा, दो कबूतर थे, एक कबूतरी एक कबूतर, वो लोग वन में गए बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए, पेड़ की डाल पर बैठे, इतने में कबूतरी ने देखा ये पास मैदान में चावल के कण पड़े हुए हैं, प्रिय चलो चुंगले, मत जाओ बहरिया होगा। अब किंतु मानी नहीं गई, और उसने डोरी खींच दी, जाल में पड़ गई, अब तो पुरुष भी बिलाता हुआ उसके पास में आया और वो भी बिलाप करने लगा, हाय है मैं नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ये पत्नी हमारी रहती तो बच्चों का पालन पोषण कर लेती, ऐसे बिलाप में कर ही रहा था, बहेलिए ने पेड़ की आड़ से बाण से मारा। हम नहीं समझते हैं कि कब मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु का कोई ठीक नहीं है, गर्भ में आ भी आ सकती है, बच्चे होने पर भी नहीं आ सकती है, 100 वर्ष तक नहीं आ सकती है, वो भगवान की माया है, भगवान की इच्छा के ऊपर में वो सब निर्भर करती है। इसलिए इसी प्रकार से शिक्षा लेना चाहिए, दूसरे तो मर गए हैं, हमारे बाप दादा तो है नहीं, रोज कितने लाखों आदमी मर रहे हैं ये भी देख रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो हम लोग नहीं समझते हैं कि कल हम भी मरेंगे। इसलिए शरीर में आसक्त न हो, कोई यदि घर में मर भी गया तो आत्मा अजब अमर है, उसके लिए चिंता मत करो। अग्नि से सीखा, अग्नि मेरी गुरु, अग्नि क्या करती है, पैखाना भी उसमें जाए, उसमें अच्छा सुगंध घी भी डाल दो, सबको जला देती है और स्वयं निर्लिप्त हो जाती है। ऐसे साधु लोग संत लोग ऐसे ही होंगे। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वो खूब सोलहों श्रृंगार करके अपने घर के सामने बैठी थी, कोई पुरुष आएगा कामी तो रुपया देगा, प्रतीक्षा करने लगी, एक आता तो कहते ये आएगा तो मेरे पास में आएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, वो चला जाता। इसी तरह से करते करते कितने आए कितने चले गए, किंतु कोई आज उसके पास में नहीं आया। तो उसने सोचा जी जैसे ये मैं दुखी हो रही हूं, इतना ली यदि इतना मैं प्रयास चेष्टा प्रतीक्षा भगवान के लिए करती तो हमारा कल्याण हो जाता। उसने पर पुरुष की कामना छोड़ दी, श्रृंगार उतार दिए और सुखी हो गई। इसी तरह से बहुत शिक्षाएं कृष्ण ने दी है, ये सब उद्धव को बदला है, इसके बाद में अंतर ध्यान। आज यहीं तक मैं कह करके अपनी कथा समाप्त करता हूं। तीर्थ महाराज जी करेंगे आज अंतिम दिन, बाकी जो रह गया करके आप लोग हरि कथा सुनेंगे। अभी मैं चलूंगा, कोई दोस्त त्रुटि मत लेंगे।
हरे कृष्णा, जैसे श्रीपाद गिरिधर प्रभु जी ने अनाउंस किया था कि गुरियो अभिवादन करेंगे, उस समय कोई भी अपने आसन से ना उठें, उनका शरीरबंद अनुरोध है जो जहाँ पर है वही बैठ करके दर्शन करें, आप लोगों के सबके प्रतिनिधि होकर अभिवादन करेंगे। और गुरु जी कल सुबह 4 बजे निकलना है, इसलिए गुरु जी अभी अपने स्थान में प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण।
अभी अभी आपके श्री मुखारविंद से जो कि महा अमृतमय वचनामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त,
अभिनंदन करेंगे अपना, हम अभिनंदन करेंगे अपना
कि हीरो जी प्रस्थान कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं?